नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642 अरब डॉलर के अधिक के उच्चतम स्तर पर। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तेज वर्षा और आंधी का अनुमान व्यक्त किया। मियामी ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन की भारत ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी पुरुष डबल्स खिताब के लिए आज रात खेलेगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ के एकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश का शीर्ष नागरिक पुरस्कार प्रदान करेंगी। अलंकरण समारोह के दौरान पुरस्कार विजेताओं के परिवारजनों ने पुरस्कार प्राप्त किए। अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये सम्मान असाधारण और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। आकाशवाणी से बातचीत में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर ने भारत सरकार का धन्यवाद किया।
मैं बहुत खुश हूं, भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देखा, समझा, बुझा, मरणोपरांत उन्हें 36 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च अवार्ड देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं।
कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी आज मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। इस मौके पर एमएस स्वामीनाथन की बेटी सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए उनके पिता को सम्मानित किया है।
आज तो बहुत खुशी का दिन है। उनकी पूरी जीवन उन्हें फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए काम किया और वो चाहते थे कि भारत में फूड सिक्योरिटी हो और सब लोगों को सफिशिएंट खाना मिले, तो इस चीज के लिए पूरा जिंदगी, जब तक उनकी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई तो वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे थे। तो हमको बहुत खुशी है कि इसका रिकॉग्निशन आज मिला है भारत रत्न के रूप में।
चौधरी चरण सिंह के पौत्र जैन सिंह ने कहा कि उनके दादा को भारत रत्न मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है।
शब्द नहीं है कैसे मैं आपको बताऊं, क्या वर्णन करूं। बहुत अच्छा लगा। पूरे सेरेमनी का भी एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल में वहां उस स्थान पे बैठे बैठे आपको धीमे धीमे एहसास होता है कि आज ये कितने ऐतिहासिक पल हैं। और मेरे परिवार के कई परिजन यहां पहुंच पाए, कई नहीं पहुंच पाए, सब लोग बहुत खुश। पूरे देश के किसानों तक ये बात पहुंची है कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है, उनके हित में लिया है, उनके सम्मान में।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में नामांकन पत्र बुधवार तक दाखिल किए गए थे और बृहस्पतिवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों और अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण में बिहार सहित 17 राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण में तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी में चुनाव हो रहे हैं। बिहार में संसदीय चुनाव के पहले चरण के लिए 4 संसदीय सीटों गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का बृहस्पतिवार को अंतिम दिन था। आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 2 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने होली और बिहार स्थापना दिवस के कारण बिहार में नामांकन भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी थी। कश्मीर घाटी में जिला निर्वाचन कार्यालय कुलगाम ने कल लोकसभा चुनाव से पहले जिले के विभिन्न कॉलेजों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के एनसीसी, एनएसएस और कैंपस प्रतिनिधियों के लिए एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में जिला स्तरीय प्रशिक्षक शौकत अहमद वानी और एएलएमटी मुश्ताक अहमद ने छात्रों, विशेषकर युवा पीढ़ी की चुनावी भागीदारी के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मणिपुर में राज्य चुनाव आयोग ने लोकसभा की 2 सीटों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। 19 अप्रैल को बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 15 विधानसभा क्षेत्रों सहित राज्य के 47 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा। बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के शीर्ष 13 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। 2 सीटों के लिए 20 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मणिपुर में राज्य भर में फैले 2,955 मतदान केंद्रों पर मतदान आयोजित किया जाएगा। चुनाव प्राधिकरण ने राज्य में हिंसा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए विशेष मतदान केंद्रों की भी व्यवस्था की है। पिछले चुनाव में मणिपुर की दोनों संसदीय सीटों पर मतदान का प्रतिशत 80% से अधिक था। इस साल भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं और मतदान प्रतिशत अधिक रहने की उम्मीद है। राजनीतिक दल कांग्रेस ने मणिपुर के दोनों संसदीय सीट में उम्मीदवार उतारे, जबकि भाजपा ने मणिपुर इनर सीट से राज्य के शिक्षा मंत्री थौनाउजम बसंत कुमार को मैदान में उतारा। पार्टी ने घोषणा की बीजेपी मणिपुर के आउटर लोकसभा सीट पर नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ के उम्मीदवार का समर्थन करेंगी। गुरुवार को हुई स्क्रूटनी के दौरान दोनों सीटों में कुल 10 नामांकन पत्र स्वीकार किए थे। हालांकि आज नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख है। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जेजे थोकसोम।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 22 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में 14 करोड़ डॉलर बढ़कर अपने अब तक के उच्चतम स्तर 642 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि लगातार 5वें सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय पहुंचे। उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया था। कैलाश गहलोत को प्रवर्तन निदेशालय के समन पर आप नेता आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी दिल्ली में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश है। विपक्षी गठबंधन INDIA की कल नई दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली होगी। इस रैली में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वामपंथी दलों और अन्य पार्टियों के प्रमुख नेता भाग लेंगे। राजस्थान आज अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि राजस्थान के लोगों ने दुनिया भर में अपनी उद्यमशीलता की पहचान बनाई है। राष्ट्रपति ने कामना की कि राजस्थान के लोग अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए देश की प्रगति में अमूल्य योगदान देते रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में विश्वास व्यक्त किया कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में राजस्थान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने संदेश में कहा कि राजस्थान की पर्यटन, लोक कला, संस्कृति एवं समृद्ध विरासत की विश्वभर में पहचान है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राजस्थान दिवस के मौके पर आज पूरे प्रदेश में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। पर्यटकों के लिए आज प्रदेश भर के स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज शाम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें कई अंचलों के कलाकार लोक गीतों के साथ लोक नृत्यों की प्रस्तुति देंगे। विभिन्न जिलों में आज पर्यटकों के स्वागत और सत्कार के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्याख्यान, प्रदर्शनी समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर की रियासतों को 7 चरणों में एकीकृत कर इस संघीय ढांचे को 30 मार्च 1949 को अंतिम रूप दिया गया था। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
ऐतिहासिक वैकोम सत्याग्रह के आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे केरल के इतिहास में अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर माना जाता है। इस सत्याग्रह ने न केवल जाति के आधार पर उत्पीड़न को बल्कि सामाजिक कुप्रथाओं को भी चुनौती दी थी। एक रिपोर्ट।
पूरे 603 दिनों तक चला यह अहिंसक आंदोलन केरल के कोट्टायम जिले में वैकोम महादेव मंदिर के पास सार्वजनिक सड़क पर पिछड़े वर्गों के लोगों के आने जाने के अधिकार के लिए किया गया था। सत्याग्रह 30 मार्च 1924 को शुरू होकर 23 नवंबर 1925 तक चला और इसे श्री नारायण गुरु सहित अनेक महान हस्तियों का समर्थन भी हासिल था। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद सभी आंदोलनकारियों को रिहा कर दिया गया और सभी जातियों के लोगों के लिए सारे आने जाने के रास्ते खोल दिए गए। मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में आज से तीव्र वर्षा और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमोत्तर भारत में भी कल तक हल्की से मध्यम वर्षा तथा आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला सहित प्रदेश के मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल रात से हो रही बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। समाचार कक्ष से जसपाल की रिपोर्ट।
पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में आए बदलाव से किन्नौर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, शिमला और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हैं। लाहौल स्पीति में आज सुबह से ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। केलंग में 3 इंच, कोकसर में 5 इंच और रोहतांग व बारालाचा दर्रे पर करीब 8 इंच बर्फबारी हो चुकी है। इस कारण मनाली केलंग सड़क समेत घाटी की अंदरूनी सड़कें आवाजाही के लिए बाधित हो गई हैं।
और अब खेल समाचारों के साथ हैं सकलीन अख्तर।
टेनिस में मियामी ओपन के महिला सिंगल्स फाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त एलेना रैबाकिना का मुकाबला आज रात फ्लोरिडा में गैर वरीयता प्राप्त डेनियल कॉलिन्स से होगा। कजाकिस्तान की रैबाकिना ने सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 27 बेलारूसी विक्टोरिया अजारेंका को 6-4, 0-6, 7-6 से हराया, जबकि अमेरिकन कॉलिन्स ने वर्ल्ड नंबर 14 एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा को 6-3, 6-2 से हराया। पुरुष सिंगल्स में रविवार को फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जानिक सिनर का सामना 11वीं वरीयता प्राप्त ग्रिगोर दिमित्रोव से होगा। पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू ऑब्डेन की शीर्ष वरीयता प्राप्त भारत ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी आज रात अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक और क्रोएशिया के इवान डोडिक की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी के खिलाफ फाइनल खेलेगी। बोपन्ना के लिए यह 14वां एटीपी मास्टर्स 1000 फाइनल होगा, जिन्होंने अब तक 25 युगल खिताब जीते हैं। भारत ऑस्ट्रेलियन जोड़ी ने गुरुवार को सेमीफाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त स्पेन के मार्सल ग्रेनोलोर्स और ऑस्ट्रेलिया के होरासियो जेबोलोस की जोड़ी को हराया था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 7 विकेट से हरा दिया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642 अरब डॉलर से अधिक के उच्चतम स्तर पर। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तेज वर्षा और आंधी का अनुमान व्यक्त किया। मियामी ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन की भारत ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी पुरुष डबल्स खिताब के लिए आज रात खेलेगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ के एकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।